अध्याय तीन, मूल्यों का भारतीय संप्रत्यय। भारतीय चिंतकों ने वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर ही चिंतन को प्रारंभ किया और समयानुसार उनका समाधान ढूंढा। जैसे बुद्ध के चिंतन के विषय चार आर्य सत्य थे, श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन प्रवृत्ति मार्ग की पुनर्स्थापना है, भारतीय चिंतन का उद्गम आत्मिक अशांति से है। संसार के दुख और पाप दार्शनिकों को अशांत कर देते थे, इसलिए वे इसके मूल कारणों की खोज में लग जाते थे। सबसे बड़ा दुख मृत्यु की कल्पना है, यह सत्य है और इसे नकार नहीं सकते। भारतीय चिंतकों ने उस मार्ग की तलाश की जिससे शांति और अमरत्व मिल सके। भारत के आस्तिक या नास्तिक सभी ने सबका एक ही उद्देश्य दिखाई देता है, दुखों से मुक्ति, उन बंधनों से मुक्ति जो मनुष्य को आत्मा का साक्षात्कार नहीं करने देते। शायद इसलिए विदेशों की दृष्टि में हमारा दर्शन निराशावादी और पलायनवादी है। यही पाश्चात्य दार्शनिक यदि गीता का अध्ययन करे तो शायद उन्हें अपना उत्तर मिल पाएगा और भटकना न पड़ेगा। पाश्चात्य चिंतक केवल चिंतक थे, लेकिन भारतीय चिंतक संत भी थे। वे अपने चिंतन को आचरण में उतारते थे। भारतीय अभिवृत्ति रही है कि जो व्यक्ति प्रवचन करता है, अर्थात ज्ञानी है, लेकिन उसके व्यवहार ज्ञान के अनुकूल नहीं है, तो उसे ढोढ़ी समझा जाता है, समाज उसे सम्मान नहीं देता। भारतीय चिंतन में व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक माना गया है। ओट का कहना है कि भारतीय चिंतन की यह धारणा रही है कि सृष्टि में ऐसी कोई व्यवस्था है जो प्रकृति और मानव समाज में सामंजस्य बनाए हुए है। इस सकित और विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इसे कहीं रित कहते हैं, कहीं कर्म और कहीं अव्यक्त। हमारे यहाँ भावना को महत्व दिया गया, फल को नहीं। अनेक परिस्थितियों में देखा गया है कि व्यक्ति शुभ भावनात्मक कार्य करता है, लेकिन फल कुछ उल्टा हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति समाज की दृष्टि में हीन हो जाता है। ऐसे अच्छे व्यक्ति को अनैतिक कार्य करने का दंड भी भोगना होता है। जब लोगों को उनकी शुभ इच्छा का पता लगता है तो दंड देने वाले दुखी हो जाते हैं। व्यक्ति द्वारा किया गया अच्छा कार्य, चाहे वह अपने लिए हो अथवा दूसरों के लिए, उसे श्रेयस्क ही कहेंगे। ऐसा व्यक्ति शरीर को स्वस्थ और सबल बनाता है, लेकिन दूसरों को दुखी या पीड़ित करने के लिए नहीं, अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए। वह मनोगम्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, परंतु प्रकृति और समाज के शोषण का कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। उपनिषद में शिष्य को सलाह दी गई है कि हित तथा कल्याण की उपेक्षा मत करना। आत्महित भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वे सभी कार्य करे जो आत्मोन्नति की ओर ले जाए। यदि उसका कार्य जनहित में नहीं है तो आत्मोन्नति के लिए वह कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा सब में है जो ब्रह्म का रूप है। अतः हमारी सभी कार्य स्वहित के लिए न होकर आत्महित के लिए होना चाहिए। स्वहित तथा परहित में संघर्ष और विरोध की कुछ संभावनाएं हैं, परंतु आत्महित तो एक ही है, चाहे वह मेरे लिए हो या अन्य किसी के लिए। उपनिषदों में कहा गया है सर्व खल्लुइदं ब्रह्मः, अर्थात यह समग्र विश्व ब्रह्म है। दूसरे चरण में कहा गया है तत्वमसि, अर्थात ब्रह्म तुम में हो। तथा अंतिम चरण में कहा गया है सो हम, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। इस कथन का मतलब ही है कि मुझे इस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि सभी प्राणी ब्रह्म का ही रूप हैं, तो भला किस प्रकार से मेरे आत्मोन्नति के लिए किया गया कार्य दूसरों की उन्नति में बाधक हो सकता है। कैसे कोई दूसरे का शोषण कर सकता है। यह स्वतः व्यक्ति के मूल्य की उच्चतम सीमा की ओर लेता चला जाएगा। ज्ञान अद्भुत शक्ति है, चाहे आत्मज्ञान हो या प्रकृति संबंधी ज्ञान। उपनिषद में गुरु शिष्य से ये अपेक्षाएं रखता है। अध्ययन और संभाषण में सदाचारी बनता, अध्ययन तथा वाणी में सत्याचरण करना, अध्ययन के साथ तप दम श्रम मन का नियंत्रण, आतिथ्य विनम्रता, आश्रितों की रक्षा तथा संतति पालन का ध्यान रखना, सत्य बोलना, कर्तव्य पालन करना, व्यक्तिगत कल्याण तथा समृद्धि की उपेक्षा न करना, अध्ययन में आमोद प्रमोद न करना, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, गुरु में उपस्थित अनुकरणीय बातों की ओर उसना करना, जब जब आचार के संबंध में शंका उत्पन्न हो तो महान शिक्षकों के आचरण का अनुसरण करना। उपनिषदों में स्वीकार किया गया है कि यह आवश्यक नहीं कि शिक्षक के आचार में सभी बातें अनुकरणीय ही हो, अतः छात्रों को शिक्षक के उचित अनुचित सभी प्रकार के व्यवहारों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। आचार समय और परिस्थिति सापेक्ष होता है, अतः समय के साथ आचार संबंधी मानक बदलते रहते हैं। भारतीय मनीषियों ने मूल्यों की व्याख्या मनुष्य के कल्याणार्थ में किया है। उनका संदेश था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्। भारतीय संतों ज्ञानियों ने सदा ही सबके कल्याण को सर्वोपरि माना है। सहिष्णुता, शांति और विनय आदि मूल्यों को कान आंख आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में कहा है, भद्रम कर्मेणि श्रुयुणाम देवाः भद्रम पश्येमाश धीर्यजत्रा। इसका तात्पर्य है कि कानों के द्वारा अच्छा सुनो, नेत्रों से अच्छा देखो, भारतीय दृष्टिकोण से अच्छाई अथवा कल्याण या शिव प्राप्त करने योग्य एक मूल्य है। मूल्य को पुरुषार्थ भी कहते हैं। भारतीय मनीषियों ने चार पुरुषार्थ बतलाए हैं। जीवन का अंतिम मूल्य मोक्ष है। मोक्ष शांति प्रदायक है। शेष तीन पुरुषार्थ सांसारिक हैं। तीन मूल्य साधन और अंतिम मोक्ष साध्य है। प्रज्ञान श्रेष्ठ मूल्य है, जिसके अंतर्गत संयम, पूर्ण शुद्धता और आत्मनियंत्रण का ज्ञान है, जो गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। ब्रह्मचर्य वह अनुशासन तथा मूल साधन मूल्य है, जो प्रज्ञान अथवा साध्य मूल्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हमारा जीवन मानसिक दवाओं और यातनाओं से भरा पड़ा है। यह पीड़ा, व्यथा, विवाद, क्लेश इत्यादि से आक्रांत है। किसी भी परीक्षा की घड़ी में हम विरोधी आवेगों के मध्य लड़खड़ा जाते हैं और यह निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा मार्ग अपनाएं अथवा क्या करें। वास्तव में मनुष्य की समस्या यह है कि जब परस्पर विरोधी आवेग हमारे समस्त प्रयत्नों को गतिहीन व अशक्त कर दें और हम अपने आप को पूर्ण अनिश्चय, समस्त प्रत्ययों को गतिहीन व अशक्त कर दें, तो हम अपने आप को पूर्ण अनिश्चय की स्थिति में पाएं, तो उस अवस्था में एक संतुलित जीवन कैसे बिताएं। गीता में ही इस समस्या का समाधान कर सकने में समर्थ है। गीता कहती है, मनुष्य को इसके नैतिक संघर्ष में जो चीज थामे रहती है वह है उसका धर्मनिष्ठ विश्वास, और अंत में अच्छाई की बुराई पर विजय अवश्य होती है। बुद्ध ने जीवन की इन पीड़ाओं, विवादों, अनुपातों, व्यथाओं, क्लेशों आदि से छुटकारा पाने के लिए अष्ट मार्ग निश्चित किया। बुद्ध द्वारा दिया गया नित्य शास्त्रीय आदेश इह लोक और परलोक में शांति की सुरक्षा का वचन देता है, इसे निर्वाण कहते हैं। मानव मूल्यों की दृष्टि से जैन शिक्षा का दर्शन एक अति समृद्ध दर्शन है। इसके अनुसार शिक्षा केवल ज्ञानार्जन ही नहीं अपितु व्यक्ति के जीवन के गहन रूप में संबंधित एक कठोर अनुशासन है। जैन दर्शन कहता है, वास्तविक ज्ञान केवल वही है जो व्यक्ति को अच्छे जीवन की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान चाहे धार्मिक हो या सांसारिक या व्यावसायिक, यदि वह व्यक्ति अथवा समाज के लिए हितकारी है तो उसे शिक्षा का अंग माना जाएगा, अन्यथा नहीं। वह सभी ज्ञान शिक्षा है जो व्यक्ति को सच्चरित्र की ओर प्रेरित करता है। यदि हम जैन दर्शन की शिक्षा के उद्देश्यों को देखें तो हमें मानव मूल्यों का एक स्पष्ट विवरण मिल जाएगा। हमें मालूम होगा कि मानव मूल्य क्या हैं और किस प्रकार वे सभी मूल्य शिक्षण से जुड़े हुए हैं तथा उन्हें किस प्रकार बच्चों के जीवन में परिणत किया जा सकता है। जैन दर्शन में शिक्षा के ये उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। एक सम्यक ज्ञान, यह ज्ञान दोष रहित होता है, अच्छे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा आवश्यक है, इसी श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धा धनात्मक अभिवृत्ति है, अंधविश्वास नहीं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर श्रद्धा भी पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तक श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धा अथवा सम्यक दर्शन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का समाहार सम्यक चरित्र में होना आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान और श्रद्धा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अहित कार्यों का निवारण और हित कार्यों का आचरण सम्यक चरित्र कहा जाता है। जैन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का इस भांति विकास करना है कि जिससे सम्यक ज्ञान की प्रतीति हो, श्रद्धा हो, भावनाओं का उन्मेष हो गया हो, चरित्र में ज्ञान और विश्वास की परिणति हो। जिस व्यक्ति ने उक्त तीनों उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, वह वास्तविक रूप में शिक्षित व्यक्ति हो है। शुद्ध रूप से सच्चरित्र व्यक्ति वह है जिसने अपने जीवन में 5 महाव्रतों को प्रमुख स्थान दिया है और 10 गुण धर्म उसके जीवन के अंग बन गए हैं। जैन धर्म में जिन 5 महाव्रतों का उल्लेख है वे निम्न हैं: 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अस्तेय, 4 ब्रह्मचर्य, 5 अपरिग्रह। 1 व्यक्ति किसी को भी जीव को मन, वचन अथवा कर्म से किसी प्रकार का दैहिक अथवा मानसिक कष्ट न दे, यह अहिंसा है। 2 सत्य का अर्थ है विचार, वाणी तथा सद्व्यवहार में झूठ न बोलें और सच्चाई का पक्ष लें। 3 अस्तेय से अभिप्राय स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी प्रकार की चोरी न करें। 4 ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम भोगों से संयम बरतें। 5 का अर्थ है अपग्रह के अंतर्गत विषय शक्ति का त्याग करना तथा वस्तुओं के संग्रह में नियंत्रण करना आता है। 10 गुण धर्म इस प्रकार हैं: 1 क्षमा, 2 मार्दव कोमलता, 3 सत्य, 4 आर्जव सरलता, 5 संयम, 6 शौच शरीर तथा मन की शुद्धता, 7 तप, 8 त्याग, 9 अमरत्व, 10 ब्रह्मचर्य। मध्यम नियम प्रतिपादन, इस नियम को ध्यान में रखकर ही अपने व्यवहार को निर्देशित करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार अथवा जीवन के किसी पक्ष में अति किसी भी चीज का ठीक नहीं होती, अतः मध्यम प्रतिपदा को ही स्वर्णिम नियम मानकर जीवन के दुखों से बचा जा सकता है। इस प्रकार के ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग: 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाक, 4 सम्यक कार्य, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मानव मूल्यों, विशेषकर नैतिक मूल्यों को प्रमुख स्थान मिला। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बुद्ध दर्शन का मध्यमा प्रतिपदा तथा प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत परिलक्षित होता है, जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन सिद्धांत का कार्य करते हैं। मनु ने अपनी मनुस्मृति में धर्म के 10 गुणों को बताया है। ये गुण नैतिकता के आधार पर हैं। इनको धारण करने वाला धार्मिक कहलाने का अधिकारी हो सकता है। धृति क्षमा, दमोष्टयम सैच मिंद्रिय निग्रह, दीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धृतिय, धैर्य, क्षमा, दम, मन का नियंत्रण आदि महत्वपूर्ण साधन है। इनके अतिरिक्त अस्तेय, चोरी न करना, शौच, भीतरी और बाहरी स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, घी अर्थात बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध, अक्रोध आदि मूल्य हैं, जो उच्च मानवीय मूल्य कहे जा सकते हैं। चार्वाक दर्शन भी सुखवादी सिद्धांत को मानता है। उसका कहना है कि जब तक जियो, सुख पूर्वक जियो। चार्वाक अर्थ और काम को साध्य और साधन मानते हैं। गांधी ने सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि माना। विवेकानंद ने आदमी के मूल्यों को स्थान दिया और कहा कि मनुष्य को मानवता का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को स्थान दिया है। आज हम भारतीय मनीषी के बनाए रास्ते से भटक गए हैं। हमारे जीवन मूल्यों में वह बात नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हमें व्यक्ति, समाज और शिक्षा तीनों को देखना होगा। शास्त्र किसी बीज की भांति अपने भीतर सभी मूल्यों को छिपाए हुए है। शिक्षा एक वातावरण है जो खाद पानी देकर बच्चे के भीतर की अच्छाई को बाहर निकालती है। दोनों के सहयोग से मूल्यों का कुछ विकास होता है। शिक्षा समाज की सीढ़ी है जिस पर पैर रखकर आदमी अपने संस्कारों को सुंदर बनाता है। ये तीनों मिलकर युग को आगे ले जा सकते हैं।